आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। इमोशनल मास्टरी ये आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें डॉक्टर प्रेम बसन भाई आपको कुछ बातें बताएंगे। मैं डॉक्टर प्रेम बसन भाई का स्वागत करती हूँ। सभी करतन ध्वनि सिंह का स्वागत करेंगे। माधवी बहन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, फूलों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर प्रेम बसन भाई 1979 में इंदौर के मेडिकल कॉलेज से एमडी हुए हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अमेरिका तथा भारत देश के अलग अलग हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के ऊपर एक कार्यक्षेत्र में कार्य किया और अभी वर्तमान समय माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट की रीति से कार्यरत हैं और मेडिकल विंग के ज्वाइंट सेक्रेटरी है। उन्होंने मेडिकल विंग की तरफ से जो अलग अलग हॉलिस्टिक हेल्थ फेयर, स्पिरिचुअल हेल्थ फेयर होते हैं, उन्होंने उनमें भाग लिया तथा सभी को साइंटिफिक वे से कैसे हेल्थ बनाए रखनी है तथा राज्यों का अभ्यास भी हम कैसे साइंटिफिक वे से भी कर सकते हैं, तथा उन्होंने 15 से भी ज्यादा लेक्चर्स जो है अलग अलग कंपनीज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में दिए हैं और अलग अलग उनके टॉपिक भी रहे हैं कि कैसे हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं, जो ड्रग एडिक्ट है उनको भी कैसे मुक्त बना सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आज आपको भी कुछ बातें बताएंगे और आपको भी लाभ देंगे डॉक्टर प्रेम बसन भाई।
ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। इमोशंस यानी भावनाएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और मेरे ख्याल से लाइफ को पूरा कंट्रोल भी करती हैं। मैं कहूं लाइफ क्या है, तो लाइफ एक इंटरप्ले है जिसमें हमारे परसेप्शंस, इमोशंस, विचार दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और फॉर्मेशन बनाते हैं, चाहे वो एटम लेवल पे हो, सब एटम लेवल पे हो। हमारे वाइब्रेशन कंटिन्यूसली स्प्रेड करते जाते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फॉर्मेशन हम अपना करते जाते हैं। इसीलिए आजकल काफी लिटरेचर इस पे आ रहा है कि आप अपने विचार, अपनी भावनाएं कैसे करो, क्योंकि हो सकता है मेरा विचार कहीं जा रहा है और उसकी भावनाओं को या तो एक्टिवेट कर रहा है या डाउन कर रहा है। चाहे हम मैनेजमेंट में हो, चाहे फैमिली में हो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है इंटरप्ले की, और उसी से हमारे कर्मा बनते हैं, कर्मिक बॉन्डेज बनते हैं। और जितना हमारा कर्मिक बॉन्डेज पॉजिटिव होता है तो हम अच्छा फील करते हैं, जितना हमारा कर्मिक बॉन्डेज नेगेटिव होता है हम भी डाउन फील करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं कुछ डाउन फील कर रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपने को डिप्रेस फील कर रहा हूं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम समाज में जो आता जा रहा है, डिप्रेशन एक मेजर थ्रेट बनता जा रहा है और डिप्रेशन के कारण कई तरह की बीमारियां भी हम इन्वोक कर सकते हैं। मैं कहूं कि डिप्रेशन हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। फिजिकली पेशेंट में सब कुछ ठीक है, इज ऑल राइट, पर कहीं ना कहीं जब हम डिटेल थ्योरी में जाते हैं, उसके क्वेश्चनिंग करते हैं, तो कहीं वो आंसर आ जाता है। इसीलिए जरूरी हो गया है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को, इमोशंस को ठीक रखें। शॉर्ट फॉर्मूला है कि हमारी टीम अच्छी होना चाहिए। TEAM, टीम। टीम का अर्थ हुआ टी थॉट्स, ई इमोशंस, ए एटीट्यूड्स, एम मेमोरीज। ये चार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। और अगर हमारी टीम अच्छी होती है तो बॉडी के ऑर्गन्स की भी टीम अच्छी होती है, सेलुलर चेंजेस भी अच्छे होते हैं, केमिकल चेंजेस भी अच्छे होते हैं, न्यूरोकेमिकल जो करंट जा रहा है वो भी अच्छा रहता है। पर टीम कहीं ना कहीं अगर डाउन है तो बॉडी के सिस्टम्स भी डाउन है और हमारे साथ जो हो रहा है आज के दिन वो भी डाउन हो जाता है। इसीलिए पहला सॉन्ग मैंने जो प्ले किया शुरू में, उस सॉन्ग का भी मीनिंग था सोचो भला करो भला। मींस जब हम सोचेंगे अच्छा, थॉट्स हमारे अच्छे होंगे और हम हमेशा गुड विशेस देते जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, तो हमारा कर्मिक बॉन्डेज कम होगा। ये थोड़ा डीपर लेवल की थ्योरी है। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पर। आज रिसेंटली हम सभी ने देखा, आप सभी बॉम्बे से हैं, कुछ इंसिडेंट्स बॉम्बे में ही हुए रिसेंटली। जो हुआ एक मॉडल का, यंग बॉय जाता है, किल करता है और खुद को भी किल कर देता है। अब अभी यूएसए में भी हुआ, बच्चे ने शूटिंग किया और खुद को भी किल किया। अब ये चीजें समाज में कॉमन होती जा रही हैं, क्योंकि जब हम अपने एंगल से देखते हैं किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, और उसका मैचिंग हमारे से नहीं होता है, हमारे एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति से मैच नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम आते हैं। जो बहनें भी करा रही हैं, कन्फ्लिक्ट कहां से स्टार्ट होते हैं, तो एक रीजन ये भी है कन्फ्लिक्ट्स का कि हम सभी अपने परसेप्शन से, एंगल से दुनिया को देखना चाहते हैं। और अगर वो मैच नहीं करता दोनों, तो कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं और वायलेंस होता है। क्योंकि हमारी जो मेमोरीज कंटिन्यूअस हमारे अंदर है, वो मेमोरीज भी हमारे प्रेजेंट एक्शन को असर डालती है, इफेक्ट करती है। कभी कभी ये होता है कि प्रेजेंट में मैं करना नहीं चाहता, पर पास्ट की जो मेमोरीज है वो हमारे प्रेजेंट एक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है। उसके पहले के भी इंसिडेंट्स देखें जो बॉम्बे में हुए, उस व्यक्ति जाता है पर उसकी जो पास्ट मेमोरीज थी उस व्यक्ति के प्रति पहले से ही ठीक नहीं थी, नेगेटिव थी, और प्रेजेंट में उसका हाथ पिस्टल पे जाता है और एक्ट कर देता है। इमोशंस इतनी जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं कि उस समय पता नहीं लगता हमने क्या कर दिया। एक बहुत अच्छा एग्जांपल यानी रियल स्टोरी हुई, बच्चा और फादर टेबल टेनिस खेल रहे हैं और बच्चा परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पा रहा था और फादर चाहता था कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करे और नहीं किया, और फादर ने वही बैट, टेबल टेनिस की बैट उसके सिर पर हिट की और बच्चा कोलैप्स हुआ और डेथ हुई। स्कूल्स में भी हम देखते हैं कभी कभी टीचर्स कुछ स्टेप ले लेती हैं जो बच्चे को वो गाइड करना चाहती हैं, पर सडनली इमोशंस हावी हो जाते हैं और हम सभी पेपर में पढ़ते हैं इंसिडेंट्स हो गए। तो इमोशंस हमारे लाइफ को टोटल गवर्न करते हैं, और मैं कहूं दो इमोशंस टोटल लाइफ को गवर्न करते हैं, मेजर इमोशंस। जो मेरा अपना एनालिसिस है, टू इमोशंस कंट्रोल टोटल लाइफ। ऐसे तो बहुत रहते हैं, पर दो ये मेजर रहते हैं, एक तरफ रहता है फियर डर और दूसरी तरफ रहता है लव प्यार। ये दोनों इंटरैक्ट होते रहते हैं। अगर फियर डोमिनेंट कर जाता है तो कई तरह के प्रॉब्लम इनसिक्योरिटीज लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, थ्रेट चालू हो जाते हैं और प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। और दूसरी तरफ अगर लव रहता है, प्यार रहता है, तो व्यक्ति को जीने के लिए होप रहती है और आगे बढ़ता है। अब ये हर एक की लाइफ में प्ले करते रहते हैं और ये एक अच्छे लीडर की निशानी रहती है कि अपने लोगों में, अपने मेंबर्स में वो किस तरह के इमोशंस को एक्टिवेट करता है। कभी कभी दोनों की जरूरत रहती, कभी कभी बैलेंस की रहती है। और पर एक्टिवेशन जो डोमिनेंट करता है उसी एंगल से हम लाइफ को देखते हैं। मैं रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ रहा था, किसी ने दी, व्यक्ति सोया हुआ है, उसको सपना आता है कि एक शेर उसके पीछे पड़ गया। वो व्यक्ति भागता जाता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ से नीचे देखता है तो शेर बैठा है, वेट कर रहा है ये गिरे। फिर उसकी आंख जाती है जिस डाली पे बैठा है, तो वहां दो चूहे डाली को काट रहे हैं, तो उसका डर और बढ़ता है, अब तो मैं गया। फिर डर के और इधर उधर देखता है तो एक सांप भी वेट कर रहा है कि ये कब गिरे अजगर शेर के थोड़ा दूर, तो मैं इसको खाऊं। तो वो सोचता है अब तो मेरे बचने के चांसेस कुछ नहीं है। घबरा के ऊपर देखता है, मुंह खुलता है तो ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो उसमें से शहद का एक ड्रॉप उसके मुंह में जाता है। उसको बड़ा अच्छा लगता है उस सर्कमटेंसेस में। वो ऊपर ही देखता रहता है और वेट करता है कि जैसे जैसे वो शहद का बूंद, हनी का ड्रॉप उसको मिलता है, अंदर उसको एनर्जी आती है एंड ही फील गुड। जैसे जैसे वो ऊपर ही देखता गया तो जो नेगेटिव कंडीशन थी, सराउंडिंग थी, वो भूल गया कि शेर वेट कर रहा है, चूहा काट रहा है और अजगर वेट कर रहा है। अब मैसेज इस स्टोरी का ये है कि हरेक की लाइफ में दोनों प्ले होते रहते हैं। लाइफ में शेर, अजगर, चूहा, प्रॉब्लम्स, पर उसी समय भगवान भी अपने वे से कुछ और मैसेज देता जाता है। और वो जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हम उन नेगेटिव कंडीशन से अपने को ओवरकम कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बेस्ट मॉडल हमारे इंडियन माइथोलॉजी में दिया गया विष्णु का। विष्णु सो रहा है, शेषनाग की 10 सिर ऊपर हैं और ओशन है, और विष्णु रिलैक्स कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। सांप ऊपर से है, 10 ओशन है, वेव्स चल रही हैं, पर वो ही इज रिलैक्सिंग। द मैसेज ऑफ दिस मॉडल इज सांप के 10 मुंह नेगेटिव कंडीशंस, ओशन लाइफ, फिर भी वो रिलैक्स कर रहा है। इसीलिए दूसरा मॉडल इंडियन माइथोलॉजी में दिखाया, श्री कृष्ण नाग के ऊपर डांस कर रहा है, शंकर सांप को लेके आराम से रिलैक्स कर रहा है। नेगेटिव कंडीशंस, स्टिल ही इज डांसिंग ऑन दैट। तो लाइफ दोनों का इंटरप्ले है। तभी ये नहीं होगा कि हम एक वेवलेंथ से चले और लाइफ में मेरी एक वेवलेंथ ही चले, वो होगा नहीं। अभी मैं, कुछ समय पहले मेरा जॉब और कुछ था एंड आई वॉज हैप्पी, नथिंग वॉज टू बॉदर। नाउ सिंस टू मंथ्स मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एक और जॉब की, हॉस्पिटल की, जिसमें मेरा रोल है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने देखा हर दिन जब इंटर करता हूं और चाहे वापस भी आता हूं, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। पेशेंट, इट इज अ ट्रॉमा हॉस्पिटल, वापस पहुंचूंगा फोन आएगा, ये पेशेंट आया, ये हुआ, ये पुलिस केस है, ये क्या करें। वहां जाते हैं तो एम्प्लॉय का प्रॉब्लम और पेशेंट्स का प्रॉब्लम, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सब फायरिंग चलती रहती है। 15-20 दिन तो मेरे लिए भी ये रहा। फिर मैंने सोचा ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने को डिटैच करके उस एक्शन प्ले से डिटैच करके खेल को देखना चालू किया। फिर मुझे मजा आने लगा। नाउ आई एंजॉय, मैं वेट करता हूं कब कौन आ रहा है। और छोटे छोटे प्रॉब्लम, कंफ्लिक्ट्स कहां से, मैं वही सोच रहा था, बहनें कह रही थी कंफ्लिक्ट कहां से आ रहे हैं। कंफ्लिक्ट कोई मेजर कंफ्लिक्ट्स नहीं थे, होते छोटे छोटे कंफ्लिक्ट्स हैं। उनमें भी जो कंफ्लिक्ट्स का मेन रीजन रहता है, एक ईगो क्लैशेस, दूसरा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रोल, हाउ टू प्ले, व्हाट टू प्ले, व्हाट टू बी डन, वहां से कंफ्लिक्ट चालू होते हैं। चौथा, जैसे मैंने बताया, अपने वे से देखना और वो मैच नहीं होना तो प्रॉब्लम आना। और इसीलिए सबसे अच्छा रोल, सबसे अच्छा लेसन ब्रह्म कुमारी का मुझे वो अच्छा लगता है। आप लोगों ने आज सीखा होगा सुबह, पहला लेसन क्या सीखा आपने, पहला लेसन क्या था, हाँ बताएं, बताइए बताइए फास्ट। और डेप्थ में जाते जाइए, क्रॉस सेक्शन करते जाइए, और हाँ और अच्छा, और यानी प्रॉब्लम के अब रूट कॉज में जा रहे हैं, कहां से प्रॉब्लम चालू हो रहा है। और अच्छा बताइए, फर्स्ट लेसन से मैं क्या लेके जाऊंगा यहां से, आप बताइए, व्हाट आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर, बिकॉज दैट इज अ पीएचडी लेसन आप ब्रह्म कुमारी। अच्छा, और शांति, और गुण आ गया शांति से, और सोचते जाइए, अच्छा सोच रहे हैं, यू ऑल आर गोइंग वेरी गुड, गो ऑन। नथिंग नथिंग न्यू, ये भी बहुत अच्छा है, नथिंग न्यू, जो मेरे साथ हो रहा है पहले भी हुआ था फिर हो रहा है, और फुल स्टॉप लगा दो, जो हुआ स्टॉप। वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट ह्यूमन नेचर का प्रॉब्लम है, अगर फुल स्टॉप लगाना आ जाए, हुआ फुल स्टॉप, पर वही मन बार बार उसको रिपीट मारता है, इसने कहा क्यों ऐसा, वो आ जाए तो यू वन, आपने मैच को जीत लिया। और अच्छा, और बताइए डेप्थ वाला, अच्छा थोड़ी एनर्जी करें, ठंड है ना, तो मेरे ख्याल से अभी ब्रेन तक ब्लड जा नहीं रहा है, तो अच्छा एक एक्सरसाइज करते हैं, हाँ सब छोड़ दें, हाथों को ऊपर करें, खींचें, खींचे, सांस लें और छोड़ें। अब दो बार ताली लेफ्ट में, तीन बार राइट में, पूरा झुकें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। अब सोच के बताएं, चाय पिया था ना आप लोगों ने आज? अच्छा, स्ट्रांग था कि लाइट चाय था? लाइट था, अच्छा। पहला लेसन सबसे अच्छा ये सिखा रहा है, मैं एक्टर हूं और मेरे सामने जो प्ले कर रहे हैं वो भी एक्टर हैं, मेरा और इनका नेचर मिल नहीं सकता, हर एक्टर अलग अलग है, हर एक्टर दुनिया में अलग है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता मैचिंग हो जाए। हस्बैंड वाइफ कितना भी एक दूसरे को जान ले, 40 साल से शादी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। अगर जान ले तो वो तो मैरिज बहुत अच्छी हो जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन से लोगों ने पूछा, सर आपकी मैरिज का सीक्रेट क्या है, जब वो गोल्डन जुबली मना रहे थे। उन्होंने कहा, देखो जब हमने शादी की, हमने प्लेज लिया, जो भी लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम आएंगे मेरी वाइफ टैकल करेगी, और कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आएगा मैं टैकल करूंगा। 50 साल हो गए, अभी तक कोई मेजर प्रॉब्लम आया ही नहीं। तो हरेक का नेचर अलग अलग है, मेरे सामने जो आ रहा है डिफरेंट है, तभी तो प्रॉब्लम है डीएनए का और थंबप्रिंट का, सबका अलग है, एक जैसा है ही नहीं, तभी तो पकड़ाई में आता है। अब इस लेसन को हमारे में क्लियर हो गया कि मेरे सामने इंटरप्ले जो हो रहा है, मुझे डिटैच होके गेम को खेलना है। द वर्ड वेरी ब्यूटिफुल इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं होता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम को छोड़ देना है, डिटैचमेंट का अर्थ है उस कन्फ्लिक्ट से मैं अपने को पहले डिटैच करूं और फिर कन्फ्लिक्ट को देखूं, ऑब्जर्व करूं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालूं। मेरे पास भी जो प्रॉब्लम आते हैं पहले मुझे डिटैच होना पड़ता है और फिर मैं उनकी तरफ देखता जाता हूं, वो फायर करते जाते हैं, ये हुआ डिटैच। कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है, इस तरीके से लगता है कि आपके पास 100 छोटे बच्चे हैं, उनको पालना है। आजकल मैनेजमेंट में हर एक का ईगो रहता है और हर अपने ईगो से फायर करता है। तो पहले डिटैच हो गया, फिर खेल को देखा, देन यू विल एंजॉय द मैच। मैं भी इन्वॉल्व हो गया, मेरे भी इमोशन उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, तो प्रॉब्लम आता है। तो चैलेंजेस जो आज आने वाले हैं वो हमें दूसरों के साथ मिलकर टीम बनाकर सॉल्व करने पड़ेंगे। आजकल इसीलिए कहा जा रहा है विन विन अप्रोच, इसलिए सब लोग मिल रहे हैं, कि एक इंडिविजुअल कभी भी हर चीज को सॉल्व नहीं कर सकता। तो टीम मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि हमें कोर ग्रुप बनाना पड़ता है, और कोर ग्रुप तैयार अच्छा हो गया तो डेलीगेशन से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लीडर को दूसरा किसी भी आइडिया को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो आइडिया चाहे किसी ने भी दी हो, चाहे छोटे वर्कर ने भी दी है, उस आइडिया को पिकअप करना चाहिए। तीसरा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आदित्य बिरला का था, तीन चीजें लाइफ में चाहिए। पहला, क्लियर विजन। आपका अगर विजन क्लियर है, गोल सेटिंग क्लियर है, कहां आप पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचना चाहते हैं, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजीज, अगर स्ट्रेटजीज क्लियर हैं। सेकंड, पैशन। अब पैशन भी एक तरह से कहा जाए एक स्ट्रांग इमोशन है। इसीलिए पहले लोग कहते थे पैशन इज ए नेगेटिव वर्ड, पर आजकल कहते हैं पैशन मीन्स पैशन होना चाहिए। पैशन नहीं है, डिजायर नहीं है, तो आदमी जैसे एक मैकेनिक है। और हम सभी मैकेनिक नहीं है, वी आर ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का अर्थ ही होता है उसके फेस पर पैशन हो। इसलिए जब डांस देखते हैं, चाहे किसी भी तरह का डांस देखें, आप देखेंगे कि उसकी मूवमेंट में फेस के साथ एक्सप्रेशन है। फेस अगर ड्राई है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो डांस में मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम इंटरैक्ट करते हैं, एक कॉरपोरेट कल्चर में केवल एक मैं अपना टाइटल और लेबल लेकर इंटरैक्ट करूंगा और कोई इमोशन नहीं, तो वो भी एक मशीन हो गया, मैकेनिक हो गया। तो सेकंड इज ए पैशन एंड थर्ड इज ए इंस्टिंक्ट। अब ये वर्ड भी अभी कॉमन होता जा रहा है। कभी कभी हम सभी देखते हैं कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता। हम कई चीजें यूज करते हैं, स्ट्रेटजीज करते हैं, पर वी आर नॉट सक्सेसफुल, डिसीशन नहीं ले पाते। और सबसे बड़ा मैं कहूं स्ट्रेस का एक मेजर कॉज होता है चॉइसेस। आजकल स्ट्रेस का एक मेजर रीजन क्या है? टू मेनी चॉइसेस। कार लेने जाऊं, ये कार लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं। कपड़ा लेने जाऊं, ये लूं, ये लूं, ये लूं। चश्मा लेने जाऊं, कौन सा चश्मा लूं, ये लूं। इसलिए लोग एक दूसरे से पूछते हैं, ये ठीक लग रहा है कि नहीं मेरे में, ये ठीक लग रहा है कि नहीं। जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिल जाता, वो लेते नहीं है। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं, आप लोग व्हाइट ड्रेस क्यों पहनते हैं? तो मैं कहता हूं एक रीजन ये है, टेंशन नहीं रहता, एक ही कलर ले लेते हैं जाके। च्वाइस हमारे पास एक ही है। टू च्वाइसेस जब रहती है तो कन्फ्लिक्ट रहता है, और कन्फ्लिक्ट डिसीशन लेने नहीं देता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का एक यही रहता है, वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीशन। और अगर डिसीशन नहीं ले पाए तो प्रॉब्लम्स आते हैं। इंस्टिंक्ट का अर्थ है, जिसको आजकल कहते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग का अर्थ है व्हाट इज योर सोल इज टेलिंग यू, व्हाट इज योर कॉन्शियस इज टेलिंग यू। इसलिए एक जो किताब है स्टीवन कोवी की, एट हैबिट, उसकी सेवन हैबिट्स पॉपुलर हुई ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। एट हैबिट में उसने यही कहा, टोटल बुक उस पर किया, लिसन टू योर इनर वॉइस एंड अलाउ अदर टू लिसन देयर इनर वॉइस। अब ये बहुत डीप क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ही कंफ्लिक्ट का कहां आता है? हम खुद तो सुनते ही नहीं है, दूसरे की भी इनर वॉइस को सुनने में इंटरप्ट करते हैं। ये मत कर, ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो कंफ्लिक्ट चालू हो जाता है। अगर ये हम सीख लें कि हम किसी की इनर वॉइस में इंटरप्ट नहीं करेंगे, मजा आएगा आपको। देखो मैं अगर यहां बैठ जाऊं, कितना अच्छा लग रहा है। किसी ने शाल ऐसी पहनी है, किसी ने कोट पहना है, किसी का पर्सनल स्टाइल अलग अलग है, बैठने का भी अलग अलग है। आई एम एंजॉइंग इट। दिस इज कॉल्ड नॉन जजमेंटल। You are not judging with your specs, with your eyes. जब हम बार बार जज करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। मैनेजमेंट में भी अगर आपने किसी को काम दे दिया, बच्चे को काम दे दिया, लेट हिम डू। ये देखा गया स्टडी में, जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन बहुत देते हैं, लेटस से एक मिनट में 18 इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उनके बच्चों का परफॉर्मेंस वीक होता है। ये रिसर्च स्टडी है। और जिनके इंस्ट्रक्शंस कम रहते हैं, मिनिमम रहते हैं, वो बच्चों का साइकोलॉजिकल बिल्ट स्ट्रांग रहता है। इसलिए कभी कभी हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लेते हैं, आईक्यू लेवल अच्छा है, पर ईक्यू लेवल कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम सब पेरेंट्स अपने में जो इनसिक्योरिटीज फील करते हैं वो बच्चों में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो कुछ भी मैं देख रहा हूं दूसरे में, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ माय पर्सनालिटी, उसकी नहीं है, मेरी है, और वो मैं उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। और इसीलिए बच्चों में भी वो इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। 21st सेंचुरी में इट इज अ वेरी टफ सेंचुरी, इट इज अ टफ सेंचुरी, और उसमें अगर साइकोलॉजिकल बिल्ट स्ट्रांग नहीं है, आईक्यू लेवल कितना भी अच्छा हो, अगर ईक्यू स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस रेट कम है। और आजकल जॉब सिलेक्शन में, प्रमोशन में यही देखा जाता है। मैंने एक का पढ़ रहा था, माइक्रोसॉफ्टवेयर की लेडी जो जॉब सिलेक्ट करती है, उससे पूछा गया, व्हाट आर द क्राइटेरियाज यू सी इन योर पीपल व्हेन यू सिलेक्ट। तो उसने पहला कहा, पहला क्राइटेरिया हम ये देखते हैं, थिंक बियॉन्ड योर वर्क, थिंक बियॉन्ड योर वर्क। अभी तक क्या था, इस वर्क में ये बच्चा, ये व्यक्ति कैसा है, ये स्किल देख रहे हैं, पर उसको ले लेते हैं, पर वो वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि वो उसके बाहर सोच नहीं रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे दे रहा है, ले रहा है, एनवलप में डाल के दे दे रहा है। दूसरा टेक्नीशियन, थिंक बियॉन्ड योर वर्क, एक्सरे ले रहा है, एनवलप में डाल रहा है, लिख रहा है, आप जल्दी से ठीक हो जाना, दे रहा है, बाहर लिख दिया। रिसेप्शन पे बैठा है व्यक्ति, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनसे कलेक्ट कर रहा है मनी, कार्ड दे रहा है, एक है वैसा का वैसा दे रहा, आया दिया। दूसरा पूरा ऑब्जर्व कर रहा है कि उस एरिया में क्या हो रहा है, पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया, कैसे डिस्चार्ज किया गया, कैसे उसके लिए गाड़ी मंगा रहा है, सब देख रहा है। इसलिए थिंक बियॉन्ड योर वर्क का अर्थ है प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस नहीं है तो हम एक मैकेनिकल जैसा होकर काम करते हैं। थिंक बियॉन्ड योर वर्क का अर्थ है कि आप हर दिन उस ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या नई चीज जोड़ रहे हैं। तो गट फीलिंग का अर्थ है, एवरी डे आई लिसन टू माय इनर वॉइस, राइट डाउन एंड टेक द डिसीशन। कभी कभी लॉजिकल डिसीशंस काम में नहीं आते। एमबीए कर लिया, आईआईएम से कर लिया, पर कभी कभी वो लॉजिकल डिसीशंस काम में नहीं आते। उस समय हमें अपने अंदर की वॉइस को सुनना पड़ता है और उसको सुनकर डिसीशन लेना पड़ता है। अब एक बहुत अच्छा मास्लो का प्रिंसिपल था। मास्लो एक साइकेट्रिस्ट था, साइकोथेरेपिस्ट, मोटिवेटर, काफी डीप उसने स्टडी किया। उसने कहा, वर्ल्ड में जितना भी अनईज है, अनहैप्पीनेस है, अनरेस्ट है, क्यों है, व्हाई देयर इज अनईज, अनरेस्ट, अनहैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। अब अपन अपने में भी देखें, why there is unease, unrest, unhappiness in my psyche? उसका आंसर दिया, why I am not going because we have a limited time. उसका रीजन उसने दिया, जब हम अपने अंदर के पोटेंशियल्स का मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते और दूसरे के पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज नहीं कर पाते, देन देयर इज अनरेस्ट, अनहैप्पीनेस, अनईज. हरेक के अंदर पोटेंशियल्स हैं. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसमें पोटेंशियल्स नहीं हो. उन पोटेंशियल्स को एक्टिवेट करना जॉब ऑफ लीडर. तभी लीडर वो सक्सेसफुल होता है जब वो उनके पोटेंशियल्स को पहचान लेता है. दैट इज वाई वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ ए लीडर इज वन हु इग्नाइट द माइंड एंड टच द हार्ट. इग्नाइट द माइंड एंड टच द हार्ट. जब तक वो इग्नाइट नहीं कर पाता तो वो लीडर एक्टिवेट नहीं कर पाता. इसीलिए आप देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत अच्छा बातें करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन. वोटर सोच रहा है मैं इसको वोट नहीं दूंगा, पर लास्ट मोमेंट जब उसके अंदर वो वर्ड्स जाते हैं उसको लगता है और वो दे देता है, तो फ्लक्चुएट होता है. इसलिए कभी कभी रिजल्ट्स एकदम फ्लक्चुएट कर देते हैं. तो पोटेंशियल्स का यूज करना आना चाहिए अपने अंदर और दूसरों के अंदर. फिर नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया, कन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन क्या है. कन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन हमारा खुद का माइंड है और माइंड में होने वाले विचार. बुद्धा ने कहा, गौतम बुद्धा ने कहा, योर वर्स्ट एनिमी इज योर अनगार्डेड थॉट्स. एक विचार घुस गया, उसको गार्ड नहीं किया मैंने, घुस गया, प्रॉब्लम. कल भी मैंने एक लेडी को देखा, शी गॉट एवरीथिंग, शी हैड सम प्रॉब्लम विथ मदर एंड नाउ शी गॉट एवरीथिंग, बट अगेन एंड अगेन हर प्रॉब्लम इज व्हाई शी इज डूइंग दिस. कहती है मेरा ये विचार निकल ही नहीं रहा है, मैं सब कर रही हूं पर निकल नहीं रहा है. क्योंकि एक विचार घुसता है तो उसके साथ 1000 थॉट्स घुस जाते हैं. एक को घुसने दे दिया तो अनगार्डेड थॉट्स में 1000 विचार और घुस जाते हैं, फिर प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं. फिर उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है. कोई कहे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्या सोचो, वो तो सर्कल चल ही रहा है अंदर, उस समय नहीं होगा. एक को हम घुसने ही नहीं दें, घुसे उसी समय किल करो. घुसने दे दिया तो डिप्रेशन चालू हो गया. मेजोरिटी टाइम क्या होता है बच्चों में, एक विचार आ गया, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे से होता नहीं है. अगर एक विचार आ गया, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सबसे नेगेटिव विचार है. मैं कहूं मिलियन डॉलर जो नेगेटिव विचार है वो ये है, जब व्यक्ति में आ गया आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ठीक नहीं हूं. क्यों ठीक नहीं है? ठीक है, नहीं नहीं मेरे पिताजी ने बार बार कहा था तू ठीक नहीं है, अब घुस गया है. वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में. अब उसका करेक्शन ये है, आई एम गुड इनफ, मैं ठीक हूं. इसलिए पहला लेसन फिर से आया, मैं पहला लेसन का जो फिर सेकंड मीनिंग है, मैं ठीक हूं. मैं उन बच्चों को भी यही सिखाता हूं. एक बच्चा अभी 6 महीने पहले आया था, उसको काफी काउंसलिंग दी तो उसने कहा, नहीं नहीं सर, मैं सोच ही नहीं सकता, आप मेरे बारे में सोचो. अब ये नया ट्रेंड आ गया कि मैं नहीं सोच सकता, आप मेरे बारे में सोचो. तभी मैंने वो पहला गीत बजाया, सोचो भला करो भला, यानी अब लेटेस्ट सेवा में बहनों को कहता हूं कुछ नहीं करो, वाइब्रेशन दो, या तो सेंटर में पंप लगा दो, गैस पंप नहीं, पेट्रोल पंप नहीं, पंप लगा दो। आए व्यक्ति वो कहे मैं ठीक नहीं हूं, पंप लगा दिया तू ठीक है, फिर गया काम पे, फिर आ गया शाम को फिर ठीक है मैं ठीक नहीं हूं, फिर लगा दिया। इतना डाउनफॉल होता जा रहा है थिंकिंग में। तो जब कभी भी ये आए मैं ठीक नहीं हूं, तो सुबह उठकर आकाश की तरफ देखें, जैसे उस कहानी में बताया शहद टपकना चालू हुआ, ऊपर की तरफ देखें, आकाश को देखें, परमात्मा को देखें और कहें मैं ठीक हूं। अभी आप लोग भी कहना, हाँ मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है, आज का दिन ठीक है, देखो सब ठीक है। अब ऐसे आ गया नहीं ठीक है, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को ये दर्द हो रहा, ये दर्द हो रहा, गर्दन नीचे हो गई। इसीलिए बार बार उस बच्चे को क्या करना, ठीक है नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हूं। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, अपना राइट हैंड लीजिए दाहिना हाथ और अपनी पीठ थपथपा दो, ठीक हो आप, सब कुछ ठीक है, कोई मुझे थैंक्स दे या ना दे, कोई मुझे शाबाशी दे या ना दे, मैं तो दे सकता हूं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। डिप्रेशन का कारण क्या है, कोई मुझे कहे मैं ठीक हूं, हाँ हाँ चश्मा ठीक है तेरा, क्यों? साइकोलॉजी का मेन रीजन क्या होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। हर एक का क्या नेचर रहता है, अटेंशन मिले नहीं मिले तो डिप्रेशन। अब मैं हमारे यहां भी देखता रहता हूं, नीचे लोग आते हैं, लाइन में जाते हैं, देखते हैं कुछ बोले, परमात्मा क्या बोलता है, परमात्मा बोलता नहीं है, दे रहा हूं फिर भी नहीं नहीं बोले। दिस इज कॉल्ड अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और डिपेंडेंट व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। आज एक एक्सपेक्टेशन है, दूसरा है, तीसरा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। और जिस दिन मैंने सोच लिया मैं अंदर से इंडिपेंडेंट हूं, बाहर से इंटरडिपेंडेंट हूं, तो ऐसा चालू हो जाएगा। इसलिए सभी देवी देवताओं को कैसा दिखाया गया, आपने देखा देवताओं को कैसा दिखाया गया, सभी ऐसे खड़े हैं, किसी देवता को ऐसा नहीं दिखाया। ऐसा दिखाया गया लक्ष्मी को, कैसे दिखाया गया गॉडेस ऑफ वेल्थ को, कैसे दिखाया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी को बंद कर देते हैं। क्या कर रहे हो सर, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो बॉडी कहती है, माइंड बॉडी को कहता है तू भी डिपॉजिट कर, कुछ कर। तो बॉडी क्या करे, बॉडी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। इसलिए कोरोनरी ब्लॉक आ जाता है, कहते हैं ना कोरोनरी ब्लॉक। ब्लॉक कैसे आया, क्योंकि हमने ही बॉडी को कहा ब्लॉक कर, तो वो ब्लॉक करती है। बॉडी वही करती है जो माइंड कहता है, बॉडी कुछ नहीं है, बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ माइंड। जो माइंड ने इसको कहा बॉडी करके दिखाएगी। आप बोलो मेरे को बहुत डर लग रहा है, बच्चा एग्जाम में जा रहा है वाइवा देखने, जैसे ही देखा एक्सटर्नल को डर चालू हो गया, डर लग रहा है मुझे। माइंड ने बॉडी को कहा डर लग रहा है, तो क्या होगा शुरू, बॉडी कहेगी हाँ मुझे भी डर लग रहा है। तो बॉडी कैसे डरती है, ब्लड कहां आ जाएगा, फियर में। फियर में ब्लड हमारे दोनों पांव में, दोनों हाथों में आ जाता है, लिम्स में, अपर लिम्स लोअर लिम्स। शटडाउन इमरजेंसी आ जाती है, माइंड कहता है इमरजेंसी, इट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या होता है, सब चीजें शट डाउन, शट शट शट, डाइजेशन शट। जो 90% ब्लड यहां चाहिए रिपेयर के लिए, आरएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर के लिए, शट डाउन, ब्लड इज नीडेड हियर। फियर में क्या करता है व्यक्ति, बताइए फियर में क्या करेगा व्यक्ति, उसको क्या चाहिए? मैं कहूं अभी आग लग रही है तो आप क्या करोगे, भागोगे। तो भागने के लिए ब्लड कहां चाहिए, उस समय ब्लड यहां नहीं चाहिए, उस समय ब्लड यहां नहीं चाहिए, भागा। और हम क्या करते हैं, अननेचुरल फियर क्रिएट करते रहते हैं अपने में, विदाउट एनी रीजन वी क्रिएट फियर। तो बॉडी क्या करती है, ब्लड यहां कर देती है। तो ये वाली क्यों होती है, इसका अर्थ क्या है? अब मैं आपको मिलियन डॉलर स्टेटमेंट देता हूं, लिखना है तो लिख लें, जिससे मैंने बहुत सीखा। इट इज ए टाओ फिलोसॉफी। टाओ फिलोसॉफी, टाओ में कहा गया, व्हाटएवर इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, व्हाटएवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। जो चीज फ्लेक्स, व्हाटएवर इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, व्हाटएवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। जो चीज जितनी सख्त है, रिजिड है, ब्लॉक है, वो चीज खत्म होगी होगी, और जो चीज फ्लेक्सिबल है, फ्लोइंग है, वो बढ़ेगी। देखो आप पैसा कैसे आता है, पैसे का सीक्रेट बताता हूं। लक्ष्मी को क्यों दिखाया ऐसा, आ रही है जाने दो, आ रही है जाने दो। बिल गेट्स क्यों दान देता है, क्यों दान देता है, फ्लो करने दो, फ्लो करने दो। जो जितना कार्य में यूज करता है उतना बढ़ता है। जो सोचता है नहीं नहीं मैं इसको यूज नहीं करूंगा, रख दूंगा, क्यों, कभी काम में आएगा, कभी काम में आएगा। सर क्यों कर रहे हो, कभी काम में आएगा, बच्चे के बच्चे के बच्चे का क्या होगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो माइंड भी बॉडी को कहता है तू भी कर, क्यों कर रहा है तू, कभी काम में आएगा, अकाल पड़ेगा तो फैट डिपॉजिट होगा तो अपन यूज करेंगे। फियर लीड्स टू इनसिक्योरिटी। अब आया नेक्स्ट बिलियन डॉलर। जब कभी भी डर लगता है तो इनसिक्योरिटी आती है, और इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मनुष्य लाइफ का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी। अब हम देखें इस लाइफ को कैसे बनाया परमात्मा ने। अगर हम कहते परमात्मा को बचपन से हमें सब दे देता, हमें बता देता क्या होगा मेरे साथ, टोटल कंप्यूटर पे आ जाता, पेन ड्राइव पे आ जाता, ये तेरा ले ब्लूप्रिंट, शायद स्ट्रेस और ज्यादा हो जाता। आज मुझे मालूम है क्या होने वाला है, आज मेरे साथ झगड़ा होने वाला है, ये होने वाला है, बीमारी होने वाली है, तो हमें और स्ट्रेस होता। तो परमात्मा ने क्या गेम प्लान बनाया, कुछ नहीं पता, अगले सेकंड क्या होने वाला कुछ नहीं पता। तो इसलिए सिक्योरिटी क्या हुई लाइफ में, हम इतनी मेहनत करते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी हुई क्या? तो एक आदमी ने कहा ओनली सिक्योरिटी इज अनसिक्योरिटी ही लाइफ में मजा आता है, रोज मजा आता है। आज के दिन कौन गेम प्लान मेरे साथ खेलने वाला है, कौन नया एक्टर मेरे से टकराने वाला है, रोज अपने को पता नहीं, तो इसी में मजा है। तभी तो वाइफ और हस्बैंड दोनों एंजॉय कर सकते, हर दिन नया है, एवरी डे इज न्यू, तभी हम लोग हर दिन नई ड्रेस पहनते हैं, करते हैं, चेंज करते हैं, नई हेयर स्टाइल करते हैं, क्यों? कुछ नया लगे। तो ओनली सिक्योरिटी इज अनसिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जितना अनसिक्योरिटी होगा उतना मेरे में प्रॉब्लम बढ़ेगा। और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले होता कुछ नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। तो सेल्फ मास्टरी इज, ये लाइफ फोकस होने, सेल्फ मास्टरी इज द डीएनए ऑफ द लाइफ। जो व्यक्ति सेल्फ मास्टरी कर लेता है वो ही डीएनए ऑफ द लाइफ मास्टरी। डीएनए मीन्स मैनेजिंग द अनएक्सपेक्टेड। पूरा गेम लाइफ का प्लान ये है कि हम अनएक्सपेक्टेड को कैसे प्ले करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस और चॉइस डिपेंड ऑन अवर थिंकिंग। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। इसीलिए हर इमोशन एक एनर्जी लेता है, या तो वो एनर्जी देगा और एनर्जी ड्रेन करेगा। वो आपको एनर्जी देगा या ड्रेन करेगा। अब मेरे ऊपर रहता है कि उस एनर्जी ड्रेन को मैं कैसे रोकता हूं, उसको कैसे पॉजिटिव इमोशन में डोलता हूं। फर्स्ट, सेल्फ कंट्रोल, डिले ग्रेटिफिकेशन, कैन डू एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, एक्सीलेंस, गुड कैरेक्टर, बेटर जजमेंट। ये 8 कैरेक्टर्स अच्छे ईक्यू के लिए हैं। इसीलिए कहा आईक्यू गिव यू सम सक्सेस बट ईक्यू गिव यू मेजर चंक ऑफ सक्सेस। ऑलमोस्ट 70-80%। डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने काफी अच्छी स्टडीज की इमोशनल इंटेलिजेंस पे, उसकी कई किताबें भी हैं, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। लाइफ में 10% व्हाट एक्चुअली हैपन टू अस, 90 हाउ वी रिएक्ट टू इट। तभी मैंने कहा 90% मेजर पार्ट इज हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन। 10% चलो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसका हमारे ऊपर कोई, हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, पर 90% इज हाउ वी हैंडल दैट। अब मैं आपको एक सिंपल सिचुएशन बताता हूं। ट्रेन में आ रहा था, एक कपल बैठा हुआ था, हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज एसी कोच। उसको चाय पीना था, स्टेशन आया, चाय नहीं पी पाया, तो एक चाय वाला चढ़ा। इसने उससे पूछा कितने की चाय है, उसने कहा 5 रुपए। ये व्यक्ति ने कहा स्टेशन पे तो 4 रुपए की, और तू 5 रुपए की चाय दे रहा है, तेरा कप छोटा है, उस स्टेशन का कप बड़ा है। 15 मिनट्स तक उससे वो बहस करता रहा, चाय 5 रुपए की क्यों और क्यों छोटा कप। अब क्या हुआ फॉर 15 मिनट्स, उसने अपनी एड्रिनल्स का यूज किया विदाउट एनी रीजन। चाय 5 रुपए, छोटा कप, एड्रिनल ने भी छोड़ता गया, स्ट्रेस हार्मोन, कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हुई, 15 मिनट चाय छोटा कप, चाय छोटा कप। अब 1 रुपए बचाने के लिए बाद में डॉक्टर को 1.5 लाख देगा एंजियोप्लास्टी के लिए, बायपास के लिए। इससे अच्छा 1 रुपया दे देता या चाय पीता ही नहीं। उसके अपने रीजन है चाय 5 रुपए के, उससे पूछो क्यों दे रहा है, वो बोलेगा सर क्या करें, पुलिस वाले को देना पड़ता है, टीटी को देना पड़ता है, कहीं तो मैं उसका सेटल करूं। और चाय छोटे कप में दे रहा हूं कि मोर टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मैं आप लोगों की हेल्थ का ध्यान रख रहा हूं। अब उस समय आपने अगर पॉजिटिव सोच को करके सिचुएशन को डिफ्यूज किया तो मामला खत्म। और होता कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में यही है कि हम उस सिचुएशन को उस समय कैसे डिफ्यूज करें, हम उस सिचुएशन को उस समय डिफ्यूज कर देते हैं, फिर बाद में उसको हैंडल करते हैं तो हमारी एनर्जी नहीं जाती। और दिन भर में हमारे पास अगर 5-6 केसेस हो गए और हमने अपनी एड्रिनल को यूज कर लिया तो धीरे धीरे 3 महीने बाद 3 साल बाद बीमारी आना शुरू, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, हर बार कंस्ट्रिक्ट होगी आर्टरी। कहते हैं एक बार गुस्सा आया तो 45 मिनट तक आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट रहती है। अब नेक्स्ट टाइम गुस्सा करो तो सोच लेना मैं 45 मिनट तक अपनी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, इसलिए स्ट्रोक और ब्लॉकेज कॉमन होते जा रहे हैं। थर्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आता जा रहा है स्ट्रोक, सडन स्ट्रोक्स बढ़ते जा रहे हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सडन जो उस समय आया इमोशन और उसको हमने ठीक से हैंडल नहीं किया तो वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है कहीं भी ब्लड वेसल को। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में आप कैसे ऑफिस जाते हैं, घर पे कैसे रहते हैं और कैसे अपने इमोशंस को लेके जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट फीलिंग, ये फीलिंग वाला पार्ट ही इधर उधर कर देता है लाइफ में। हमारे अंदर अब ये लास्ट पिक्चर है इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस। हम जो भी देखते हैं सुनते हैं सब इंफॉर्मेशन हमारे एक सेंटर पे जाती है, वहां से वो इंफॉर्मेशन रिले होती है हायर सेंटर्स पर और वहां से डिसीशन होकर हम एक्शन करते हैं, वापस हमारे इमोशनल सेंटर पे आती है जहां पुरानी खबरें भी आ रही हैं और फिर हम डिसीशन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रूट आर हायर सेंटर्स, वी आर यूजिंग अवर हायर सेंटर्स। पर परमात्मा ने एक छोटा इंफॉर्मेशन रिले बनाया है, कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे इमोशनल सेंटर पे आती है और पुरानी खबरें इधर आती है और हम एक्शन ले लेते हैं। तो सिंपल वे में कहें, वन इज ए लॉन्ग रूट, वन इज ए शॉर्ट रूट। शॉर्ट रूट क्यों बनाया परमात्मा ने? इसलिए बनाया कि ड्यूरिंग इमरजेंसीज आई कैन टेक फास्ट डिसीशन। नहाने गया, नहाने में गर्म पानी में हाथ डाला, पुरानी मेमोरी कहेगी इट इज वेरी हॉट और एकदम शॉर्ट रूट कहेगा हटा ले मैं हटा दूंगा। उस समय मैं लॉजिकल रूट से नहीं पूछूंगा हटाऊं कि नहीं हटाऊं, कितने चांसेस हैं, तब तक हाथ गायब हो जाएगा। रोड क्रॉस करते हैं, देखते हैं लेफ्ट राइट, क्रॉस कर देते हैं। उस समय लॉजिकल रूट से नहीं पूछते हैं कि कितना यहां रूट ट्रैफिक है, हर घंटे में कितनी कार आ रही है, फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। अब होता क्या है, आज का व्यक्ति इंपल्सिव हो गया है, सेंसिटिव हो गया है। ये दो कैरेक्टर अभी मैं देख रहा हूं, इंपल्सिव एंड सेंसिटिव। इन सेंसिटिव माने टच किया, विग्रस, वायलेंट। और पुरानी मेमोरीज हमें एक्टिवेट कर देती हैं, यहां से जो आती हैं वो एक्टिवेट करती हैं। बेस्ट एग्जांपल था वर्ल्ड कप मैच फुटबॉल का, फ्रांस वर्सेस इटली। जिडान जिडान ने देखा उस व्यक्ति को, प्रीवियस मेमोरीज वॉज नॉट गुड विद दैट फॉर दैट पर्सन। उसने कहा कर दे, शॉर्ट रूट ने कहा आज तेरे सामने है, उसने कर दिया। फॉर वन सिंगल सेकंड मिस्टेक ही वॉज आउट ऑफ द ट्रैक फील्ड, और उसके कारण लोग कहते हैं फ्रांस हार गया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जीत जाता, उनका की प्लेयर था। अब उस समय अगर मैं प्रीवियस मेमोरीज को ओवरपावर नहीं करने देता और लॉजिकल सोचता तो शायद रुक जाता। इसीलिए लोग कहते हैं जब गुस्सा आए 10 तक गिनो। क्यों बोलते हैं 1 2 3, 10 के बाद बोलूंगा पर 10 के बाद बोलूंगा। तो क्या होगा, वो जैसे जैसे 10 काउंट करेगा उसका लॉजिकल रूट स्टार्ट हो जाएगा और 10 के बाद बोलेगा कोई फायदा नहीं। पर अगर नहीं किया तो शॉर्ट रूट ने कहा तू भी निपटा दे, और निपटा देते हैं। और उस समय जो भी चीज हमारे हाथ में रहती है हम कर देते हैं, इसलिए मर्डर होते हैं। चाकू हाथ में था, कर दिया, पिस्तौल थी, शूट कर दिया, क्योंकि उस समय पास मेमोरी ने और शॉर्ट रूट एक्टिवेट हो गया। क्योंकि हम लोगों की पर्सनैलिटी आजकल इंपल्सिव होती जा रही है और बच्चों में भी वो जा रही है, जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चों में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है बचपन से ही बच्चों को ट्रेन किया जाए। इंपल्शन के कारण कई तरह के नुकसान होते हैं। अब ये पर्सनालिटी बनी थी बहुत साल पहले फियर के कारण, डर के कारण। क्यों बनी थी पर्सनालिटी, हमारे जीन्स में कैसे आई, कि जब कभी भी व्यक्ति को उस समय प्रॉब्लम आता था, जैसे पहले का व्यक्ति कहते हैं जंगल में रहता था और जंगल में उसके सामने केवल एक ही प्रॉब्लम आता था, एनिमल। जैसे ही एनिमल उसके सामने आया तो इसके पास दो चॉइस रहती थी, अगर मैं स्ट्रांग हूं तो फाइट करूं और नहीं स्ट्रांग हूं तो भाग के छुप जाऊं। तो दो टर्म्स आ गए फिजियोलॉजी में, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। अब 21वीं सदी में सेम फिनोमेना है, लड़ो या भागो, पर तीसरी पर्सनालिटी कॉमन होती जा रही है, ना इधर फाइट करो तो अच्छा है, लड़ो, सिचुएशंस को लड़ो और फेस करो, फेस इट, फिनिश इट। पर आजकल तीसरी टर्मिनोलॉजी हो रही है, ना इधर फाइट, ना इधर फ्लाइट, थर्ड फ्राइट, वहीं का वहीं खड़े हो गए, शॉक, और शॉक के कारण सडन हार्ट अटैक आ गया। इसलिए सडन हार्ट अटैक कॉमन हो रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है 70-80 पे, पंप है, इट इज ए पंप, जैसा नर्वस सिस्टम चल रहा है उसको इंफॉर्मेशन जा रही है उसके अनुसार काम कर रहा है। सांस रोक ली, डर लगा, 110-120। कल मैंने एक को देखा, उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, कुछ अलर्ट, कुछ प्रॉब्लम था, इंजेक्शन दी, उसने सांस रोक ली डर के कारण, होल्ड कर रहे थे, एकदम बीट्स 110-120 पे जाने लगे, फिर सांस लो, छोड़ो छोड़ो। इसलिए आजकल ब्रीदिंग क्लब्स कॉमन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सांस लेना और छोड़ना सिखाया जा रहा है, पहले कभी नहीं सिखाया, 80 के पहले कभी हमने नहीं सीखा कि ऐसा करा जाता है। 80s, 90s के बाद ये सब आए, हंसने के क्लब, जाओ हंसो, अच्छा है, हंसोगे तो क्या होगा, हंसोगे जोर से हंसोगे तो आपका हार्ट लंग्स काम करेगा और आप एक्सप्रेस करोगे, अच्छी चीज है, एंड इट शुड बी कंटिन्यू। ऐसा नहीं हो कि हंसे वहां और फिर सीरियस हो जाएं, कंटिन्यूस हंसे। जब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए इजी लें, टफ नहीं लें। हम लोग सीरियस हो जाते हैं, नॉन एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, वो डेंजरस होती है। सबसे डेंजरस पर्सनैलिटी कौन सी है मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा द डेंजरस पर्सनैलिटी इज, जो हम सभी में बहुत कॉमन है इंडियंस में, नॉन एक्सप्रेसिव। नॉन एक्सप्रेसिव मींस लोग मुझे कह रहे हैं घर पे, अगर वाइफ हस्बैंड टाइट है दोनों में से एक, या फादर बहुत टाइट है या मदर टाइट है, तो क्या होगा उस बच्चे की पर्सनैलिटी? डिग्री कर ली पर बोल नहीं पा रहा है, निकल नहीं रहा है शब्द, क्योंकि डोमिनेंट पर्सनैलिटी उनके ऊपर रही। ऑफिस में भी अगर कोई टाइट बॉस मिल गया तो क्या हुआ उस व्यक्ति की हालत, तो बेचारे की ना इधर बोल सकता ना इधर बोल सकता, तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर रखता जाएगा। सप्रेशन, डिप्रेस इम्यून सिस्टम, बीमारी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं वो व्यक्ति दो है, दो चीजें हैं, या तो वो किसी चीज को होल्ड कर रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ नहीं रहा है, या उसने कोई चीज सप्रेस की हुई है। कैंसर, इवन अप टू कैंसर सप्रेस कर लिया है। इसलिए आज ये दोनों चीजें कॉमन होती जा रही हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लॉफिंग, क्योंकि एटलीस्ट वो थोड़ी देर बाहर निकाल रहा है। सांस में क्या कर रहे हैं हम, इसलिए जब गुस्सा आए तो क्या करें, हंस तो सकते नहीं। अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, वाइफ हंस दे तो और गुस्सा आए उसको, तो क्या करे वाइफ, फिर गुस्सा करे, तीन बार गुस्सा करेगा, चार बार करेगा, फिर चुप हो जाएगा। सामने वाला गुस्सा क्यों करता है, वो देखता है इसके ऊपर असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, असर आएगा तो और करेगा, असर नहीं आएगा मामला खत्म हो जाएगा। ये आपको सीक्रेट बता रहा हूं। तो उस समय आप ताली बजा दे, चलो फिर से एक्सरसाइज, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। कभी भी किसी व्यक्ति से हर चीज कंट्रोल नहीं हो सकती, कितना भी कर ले, इसलिए क्या करें उस समय, फिर मिलियन डॉलर स्टेटमेंट, लेट गो, जाने दो, लेट गो। मेरे को भी कभी लगता है भारी हो रहा है, मैं करता हूं लेट गो, चिपक नहीं जाए मेरे से। एक बार लेट गो कर ली, फिर से हल्का हो गया, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। कोई भी चीज को हम पकड़ लेते हैं वो चिपक जाती है, ऐसा प्रॉब्लम विचारों का ऐसा खेल है। उसी समय क्या करें, हर घंटे क्या करें, चेक करें, कोई चीज मेरे को चिपक तो नहीं रही है, लेट गो कर दो। आप लोग ऑफिस में भी आजकल कर सकते हैं, अलाउड है। क्या कर रहे हो, अब तो बॉस पूछे, सर लेट गो कर रहा हूं। इसलिए कहा गया एक सर्वे में, लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग किसको छोड़ते हैं, बॉस को छोड़ते हैं। तो लेट गो करना आना चाहिए, फिर से वही आ गया, जाने दो। लेट गो करना नहीं आएगा तो जी नहीं सकते, और हम सब इंडियंस इसमें मास्टर हैं। क्या करें, बचपन से ही ऐसे जीन्स चले जाते हैं। दूसरे की खुशी में हमें मजा नहीं आता, प्रॉब्लम ये है हम सबका। इसीलिए बहनें कभी कभी बोलती हैं, चार तरह के दुखी हैं आजकल, एक खुद के दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरा दूसरों के सुखों से दुखी, और चौथा बिना कारण दुखी। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनको मजा आता, अरे सर क्या है, बहुत प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम के बिना मजा नहीं आता उनको, नहीं आए तो उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है। इसीलिए एक चीज हमेशा सिखाता हूं बच्चों को, ये दो कान इसीलिए दिए गए हैं, सुनो, पर मजा नहीं आए जिस चीज में, दूसरे को निकाल दो। लास्ट स्टोरी, छोटे छोटे मेंढक की रेस चल रही थी, फ्रॉक्स, बहुत बड़ा टॉप टावर था, वहां तक पहुंचना था। लोग खड़े हुए थे, लोग बोले जा रहे थे, ये छोटे कभी नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा टावर वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। फिर भी एक फ्रॉग पहुंच गया। ये लोगों ने सोचा, ये छोटा फ्रॉग कहां से पहुंच गया, उसके पास गए, देखते हैं ये कैसे पहुंच गया। देखा वो फ्रॉग सुन नहीं सकता था, लाइफ में वो ही पहुंचता है टॉप पे, दूसरे की बात को लगाता नहीं है। सुनो सुनो, आइडियाज लो, पर लगा नहीं दो, चिपक नहीं जाओ, फील नहीं करो। फील करेंगे तो हमारी बॉडी भी फील करती है। प्रॉब्लम ये है, भगवान हमें अगर यहां स्विच दे देता, यहां स्विच दे देता तो कितना अच्छा था, प्रेशर कुकर जैसा, सेफ्टी वॉल्व, सीटी बज गई, प्रेशर नॉर्मल। मैं कभी कभी पूछता हूं, क्यों नहीं दिया भगवान यहां सेफ्टी वॉल्व, दे देता कितना अच्छा होता। किसी ने कहा, गुस्सा किया, सीटी बज गई, चुप हो जाओ। अब वो जाती हमारे टारगेट ऑर्गन्स में है, जो भी चीज हमने फील कर ली बॉडी भी फील करता है। इसीलिए ये हार्ट सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, बेचारा कोरोनरी आर्टरी क्या करे, सेंसिटिव है, उसको ठंड में डायलेट होना है, पर ठंड में कंस्ट्रिक्ट होती है, इसलिए ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। इसलिए ठंड में तो और सावधानी लेना चाहिए, दिसंबर जनवरी में फीलिंग नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी करना चाहिए, गर्मी आ जाए, सूरज आ जाए, फिर अच्छी एक्सरसाइज कर ली, बहुत जल्दी एक्सरसाइज ठंड में नहीं करना चाहिए। 6 बजे उठ के, उस समय ब्लड प्रेशर हाई होता है, स्ट्रेस हार्मोन हाई होते हैं, आराम से करके अपनी अच्छी एक्सरसाइज करो सुबह उठकर, जिससे कि बॉडी का सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाए, जो मैंने बताया, लचीला हो जाए, पूरे जॉइंट्स को खोलो, पूरे सबको खोलो, जॉइंट्स को स्टिफ नहीं करो। जितना स्टिफनेस आएगा उतना आर्थराइटिस स्पॉन्डोलाइटिस आ जाएगा। और बड़ी चीज इसमें क्या करना है, अपने टाइटल को पकड़ के नहीं चलो। मैंने कहा ना, टाइटल भी पकड़ लिया, मैं ये हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं डीन हूं, गर्दन अकड़ना चालू हो गए। आप देखेंगे किसी को बहुत टाइटल पकड़ा हुआ है तो उसका क्या होता है, वो चलेगा भी ऐसे, टाइटनेस आ जाएगी, नेचुरल आ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, सब प्रॉब्लम आ जाते हैं। और जितना लाइट चलोगे उतना नी के ऊपर असर नहीं आएगा, नहीं तो हम नी के ऊपर वजन डालकर चलते हैं जब टाइटल को लेके चलते हैं। तो इसीलिए आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया, पैकेजेस दिए जाते हैं, एक घुटने की सर्जरी कराओ, एक फ्री कर देंगे, आगे चल के शायद ये आ जाएगा, 3 वेसल ब्लॉक है, एक करा लो, 2 हम फ्री कर देंगे। इसीलिए फ्लेक्सिबल रहो, ईजी रहो, कोई भी चीज को इतना सीरियसली ना लो कि मेरी बॉडी उस पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दे और बॉडी में स्टिफनेस आए। तो ये फाइट और फ्लाइट को छोड़ के, फाइट फ्लाइट फ्राइट, उसमें से सबसे अच्छा क्या है, फाइट करना है। कोई भी सिचुएशन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके फाइट करिए। इसीलिए अर्जुना को भी क्या हुआ, अर्जुना भी भागने की कोशिश कर रहा था, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, भागने का चांस है ही नहीं, तुझे तो लड़ना है। 18 चैप्टर में अर्जुना को तैयार किया। गीता क्या है, 18 चैप्टर में अर्जुना को तैयार किया। पहला चैप्टर क्या है, श्री कृष्ण सुन रहा है, अर्जुन बोल रहा है ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, श्री कृष्ण सुन रहा है काम एंड कूल। तो लास्ट में चार फैक्ट्रीज देता हूं और फिनिश करता हूं। चार फैक्ट्री हमेशा अपने साथ लेके चलो एज ए लीडर। पहली, माइंड में आइस फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री का अर्थ क्या है, बर्फ। आइस यानी कूल काम कॉन्फिडेंट, कूल काम कॉन्फिडेंट। लोग आपको हिलाएंगे, आएंगे। अगर आप लीडर हो तो आपका टेस्ट पेपर तो होगा। अगर डरते हो मत बनो लीडर, फिर अपनी पोजीशन एक सिंपल लेके बैठ जाओ, नहीं नहीं मुझे नहीं बनना, मैं यहीं रहूंगा। लीडर बनना है तो लोग तो हिलाएंगे भा 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 रोज। तो उस समय कूल काम कॉन्फिडेंट। सेकंड फैक्ट्री, टंग। टंग में क्या करना है, शुगर फैक्ट्री, स्वीट। सुनो सबकी, एज ए गुड लीडर द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज लिसनिंग। सुनो, स्वीट, फर्म भी रहना है, ऐसा नहीं है कि फर्म नहीं रहना है, फर्म रहना है पर स्वीटली फर्म रहना है। थर्ड, हार्ट। हार्ट में लव। लव यानी आपने डिसीशन दे दिया, उसके बाद दुआ दो, लव। डिसीशन देना है, और कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में यू हैव टू टेक डिसीशंस, पर उसके बाद उस व्यक्ति से मेरी दुश्मनी नहीं है। आई एम अगेंस्ट अ नेगेटिव बिहेवियर बट आई एम नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन। उसको दुआ दी तो मेरा कर्मिक अकाउंट नहीं हुआ, मेरा कॉन्शियसनेस मुझे नहीं खाए दिन के एंड में। मैं हमेशा यही सोचता हूं, एट द एंड ऑफ द डे मेरा कॉन्शियस मुझे नहीं खाए। फोर्थ, इंटेस्टाइन, आयरन एब्सॉर्प्शन। टफ, फर्म। टफ थोड़ा हाई वर्ड हो गया, फर्म। यू हैव टू बी फर्म, स्ट्रांग, स्ट्रांग। ये चारों रहती है तब हम आज के समय में काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आजकल आपको बता दूं, नो वन वॉन्ट टू बी मैनेज। आजकल क्या है लेटेस्ट, नो वन वॉन्ट टू बी मैनेज, एवरी वन वॉन्ट टू बी मैनेज बाय देमसेल्फ्स। इसलिए बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसको कैसे हैंडल करना ये बड़ा ट्रिकी मैटर रहता है इधर से उधर। तो लास्ट में एक सॉन्ग बजाते हैं, चल अकेला। आप भी खड़े हो जाइए, एक्सरसाइज करते हैं और फिनिश करते हैं। काम स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, ब्रीथ इन एंड आउट। कोई बात नहीं, नहीं हो
चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला।
ओपन, लेट गो, लेट गो, पीछे छोड़ते जा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।